ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय So today we'll give the class in Hindi. आज हिंदी में क्लास होगी. श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद अध्याय एक श्लोक नंबर 29. ये जो श्लोक है ये बहुत लंबा श्लोक है जिसका उच्चारण अक्सर हम नहीं करते हैं. तो हम सीधा शब्द अर्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे. सीधा हम शब्द अर्थ करेंगे. हाँ
शब्दार्थ एवं इस प्रकार उषम अयनेश सभी सुजो के स्वतनवेश अपने पुत्रों में अथा तत्पश्चात जगति पते ब्रह्मांड के स्वामी जगते ब्रह्मांड को अर्बुदाने अर्बुद 10 करोड़ की संख्या एकादश 11 परिवश्चराणाम वर्षों का अव्याहृता बिना रोक टोक के अखिला विश्वव्यापी पुरस्कार शौर्य सार शक्ति संभृत प्रदत्त दो दंड दो दंड बलिष्ठ भुजाओं वाले जुगला दो आपीड़ित खींची गई मौरी गुणा धनुष की डोरी अस्तनित टंकार से विरमित पराजित धर्मा धार्मिक नियम प्रतिपक्ष विपक्षी बर्हिष्मत्या अपनी पत्नी बर्हिष्मती का च तथा अनुदिनम प्रतिदिन एधमान वर्धमान प्रमोद मनोरंजन प्रसरण सुशीलता सौजन्य औषण्य स्त्रीयोचित व्यवहार ब्रेड़ा लज्जा से प्रमुषित संकुचित हास हसी हास्य अवलोक चितवन रुचिरा मनोहर छेलियादिभि विनोद आदि पराभूयमान पराजित होकर विवेक अपने वास्तविक ज्ञान एव सदृश अनबुद्ध्यमान विवेकहीन व्यक्ति एव सदृश महामना महान आत्मा बुभुजे राज्य किया. अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा. इस प्रकार से कवि महावीर तथा श्रवण के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रिय व्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया. जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी उनके अद्वितीय शौर्य से डरकर न जाने कहां भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी बरहिष्मती को अत्यधिक प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। अपनी स्त्रीयोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी बरहिष्मती उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के प्यार में डूब गए। पुरुष के साथ सामान्य पुरुष आचरण करते, किंतु वास्तव में वे महान आत्मा थे। तात्पर्य, इस श्लोक में धर्म प्रतिपक्ष से न केवल किसी विशेष धर्म का वरण वर्णाश्रम धर्म का संकेत मिलता है। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों को जीवन लक्ष्य की ओर क्रमशः अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन में वे इतने कठोर थे कि इसकी उपेक्षा करने वाले युद्ध के लिए ललकारे जाने या दंडित किए जाने के भय से दूर भागते फिरते थे। निसंदेह महाराज प्रियव्रत को अपने दृढ़ संकल्प के कारण लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके विपक्षी वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते थे। कहा गया है, जो मानव समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा चालित नहीं होता है वह बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज से बढ़कर नहीं है। अतः महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण तथा द्वितीय शौर्य से वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ बनाए रखा। इस प्रकार का कठोर जागरूक जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण तथा सन्यासियों को स्त्रियों से किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु क्षत्रियों तथा गृहस्थों को अपनी कर्तव्य पालन के लिए अपनी पत्नियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के बिना अपना दायित्व निभा ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। क्षत्रियों को राजकाज चलाने के लिए कई पत्नियां रखने की छूट थी। कर्म तथा राजनीतिक कार्य के जीवन में योग्य पत्नी का साहचर्य अनिवार्य है। अतः सुचारू रूप से कर्तव्य पालने के लिए महाराज प्रियव्रत ने अपनी सुंदर पत्नी बरहिष्मती का लाभ उठाया, क्योंकि वह स्त्रीयोचित वेशभूषा, मुस्कान तथा हाव भाव से अपने पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी।
ओम ज्ञान दिमेंद्रस्य ज्ञानंजनाशलक्य चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदनिगं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथाङ्गं सद्वैतं सुवधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते भक्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंच कल्प तरव्यश्च कृपा सिंधु वच परिता पवने व्यो चेतन प्रभु नितनंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो इस समय हम भागवतम के पांचवें स्कंद के प्रथम अध्याय में महाराज प्रियव्रता की कथा पढ़ रहे हैं और महाराज प्रियव्रता कोई साधारण पुरुष नहीं थे, स्वयं वो मानव के पुत्र थे। वो स्वयं वो मानव किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महाराज प्रियव्रता को आध्यात्मिक ज्ञान नारद मुनि ने दिया था। नारद, नारद का अर्थ है जो केवल लोगों को नारायण की शिक्षा दे और उनकी और कोई रुचि नहीं, चाहे मृगारी शिकारी हो, चाहे व्यासदेव हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रियव्रता। नारद मुनि का एक ही भाव है, वो ये है आध्यात्मिक उपदेश। चौथे स्कंद में अपरते और नारद मुनि जी की शिक्षा। एक राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रचीन बाड़ी, जो कर्मकंड कार्यों में जुड़े हुए थे। तो नारद मुनि गए उनके महल में और कहने लगे, जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना और असली आनंद अनुभव करना, जो कि केवल संभव है भक्ति योग के माध्यम से। ये जो भौतिक संसार में जो आनंद हमें दिखता है, ये जो आनंद हम और जो कार्य हम आनंद मानते हैं, वो असली आनंद नहीं, वो क्लेशों का कारण बन जाता है। तो नारद मुनि महाराज प्रियव्रता को ज्ञान दे रहे थे और महाराज प्रियव्रता स्वयं वो मानव के पुत्र होते हुए भी उनकी पृथ्वी के शासन में कोई रुचि नहीं थी। वो उनकी रुचि थी केवल गहराई से भक्ति योग का पालन करना, ब्रह्मचारी जीवन बिताना। और हालांकि उनके पिता की इच्छा थी कि पूरे विश्व का शासन करें, स्वयं वो मानव अनेक लोगों का शासन कर रहे थे, कोई छोटे देश का नहीं। और उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र प्रियव्रता शासन करे। पर प्रियव्रता को नारद मुनि ने शिक्षा दे दी थी कि तुम ब्रह्मचारी जीवन बिताना, गृहस्थ आश्रम में मत फंसना और तुम जुड़े रहो भगवान की सेवा, भगवान के चिंतन में। तो महाराज प्रियव्रता पर्वत में बड़ी गहरी तपस्या कर रहे थे और नारद मुनि उनके साथ बैठे थे जो उनको शिक्षा दे रहे थे। जब वो शिक्षा दे रहे थे, वहां अपने हंस पर पहुंचे ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके पिता थे। और ब्रह्मा जी को आदेश दिया था स्वयं भगवान ने, भगवान ने आदेश दिया था ब्रह्मा जी को, तुम जाकर प्रियव्रता को समझाओ। प्रियव्रता पिता की बात नहीं मान रहा था। प्रियव्रता को पिताजी कह रहे थे शासन करो, और प्रियव्रता कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ब्रह्मचर्य, मैंने पूरे विश्व का शासन नहीं करना, मैं शासन करूंगा तो गृहस्थ आश्रम में इत्यादि प्रवेश करना पड़ेगा और मैं किसी प्रकार से भक्ति के कार्य से विचलित नहीं होना चाहता। तो महाराज के स्वयं मानव के सामने बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जीवदारी सबसे बड़े पुत्र को सौंप कर वो और गहराई से जुड़े अपने आध्यात्मिक कार्य में। तो भगवान ने भेजा ब्रह्मा जी को इस आदेश के साथ कि तुम जाकर प्रियव्रता को समझाओ। तो ब्रह्मा जी पहुंचे, स्वयं वो मानव तो थे उनके पिताजी और ब्रह्मा जी थे दादाजी। तो फिर ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें सारे प्लैनेट, सारे यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड का शासन करना चाहिए। और एक साथ एक स्थान में बैठे थे शिव जी, महाराज प्रियव्रत और संयम मानु और नारद और ब्रह्मा जी सब एक स्थान में बैठे थे। अंदाजा लगाओ क्या खूबसूरत स्थान। तो एक तरह से नारद मुनि शिक्षा दे रहे, एक तरह से पिताजी विनती कर रहे हैं, और ऊपर से हंस है सत्यलोक से पहुंचे कौन, ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, और ब्रह्मा जी वहां पहुंचे थे भगवान की प्रेरणा पर। तो जब ब्रह्मा जी पहुंचे, ब्रह्मा जी इज द सेकेंडरी क्रिएटर, ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी ने तो शासन करना है, शासन किए बिना कोई कार्य नहीं चलता। तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रियव्रत को ये शिक्षा दी कि तुम इस जिम्मेदारी को उठाओ, तुम जिम्मेदारी को उठाओगे तो तुम्हारे पिताजी भी ये सब जिम्मेदारी तुम्हें सौंपेंगे, और फिर पिताजी जुड़ेंगे बिल्कुल भक्ति में। तो फिर प्रियव्रत ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, तो वो नारद मुनि ने स्वीकार कर लिया। हालांकि एक तरह से नारद मुनि एक उपदेश दे रहे थे कि तुम ब्रह्मचारी जीवन में आना, और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि तुम विश्व का अनेक लोकों का यूनिवर्स का शासन करो, तो वो मान गए। तुम्हारा प्रियव्रत ने विवाह किया विश्वकर्मा की पुत्री के साथ बृहस्पति, और उनके 10 बेटे थे और एक बेटी थी, और 10 बेटों में 3 ने सन्यास ग्रहण किया, 3 परमहंस बन गए, कवि महावीरा और सावन। ये 3 पुत्र जो थे इन्होंने सन्यास आश्रम ग्रहण किया, और पिछले श्लोक में समझाया गया है कि सन्यास आश्रम के भी 4 स्टेजेस होते हैं। हाँ, और कुदीच भव कुदीचक भवदत्त कोई भी जगह चार्य और पारमहंसा। तो ये 3 पुत्र थे, तीनों पारमहंसा थे। तो प्रभुपाद के और वहां प्रियव्रत के शासन के समय बड़ी शक्ति के साथ धार्मिक नियमों का पालन किया जा रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो धार्मिक नियमों के विरोध का कार्य करे। और जैसे ये कहा गया है, महाराज प्रियव्रत ने शासन किया 11 अर्बुदास के लिए। अपने नाम सुना है अर्बुदास? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, एक अर्बुदा है 1 अरब साल। तो 11 अरब सालों के लिए महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी पर शासन किया, और उनके 10 पुत्रों में 3 ने तो बिल्कुल संन्यास ग्रहण कर लिया, पारमहंस बन गए, बाकी जो 7 थे वो गृहस्थ बने, और उन्होंने आगे जाकर पूरे ब्रह्मांड का शासन किया। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णाश्रम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य लगभग इस विषय पर है, वर्णाश्रम धर्म। भगवद्गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, चतुर्वर्ण माया श्रेष्ठम गुण कर्मा भागवता। समाज ये गुणों और कर्म गुणों के अनुसार मैंने समाज का विभाजन किया है, 4 वर्ण में और 4 आश्रमों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन्हें कहा जाता है वर्ण। और आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वर्णप्रस्थ सन्यास। ये 4 वर्ण 4 आश्रमों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समाज को सुखी देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि समाज में सुख शांति हो, तो वर्णाश्रम की स्थापना महत्वपूर्ण है। और अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रमों की अलग अलग जिम्मेदारी है। जैसे कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन भगवद गीता में भगवान करते हैं, समो दमो तपो सोचम शांति रजवम एवच ज्ञानम ज्ञानम अस्तिकम ब्रह्म कर्म सुभागजा। ब्राह्मण के पास आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं मैं पैदाइशी ब्राह्मण हूं तो मुझे ब्राह्मण का अधिकार होना चाहिए, ब्राह्मण का आदर होना चाहिए। भगवान स्पष्ट कहते हैं गुण कर्म, गुणों के अनुसार, तो ब्राह्मण के गुण हमारे में होने चाहिए। इसीलिए इस्कॉन संस्था में जब पहले लोगों को हरि नाम दीक्षा दी जाती है, फिर जब देखा जाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल किया है, जब देखा जाता है शुद्ध चरित्र है, ज्ञान है, फिर ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो ब्राह्मण व्यक्ति बनता है गुणों पर आधारित। हमारी संप्रदाय में भक्ति सिद्धांत जी, पिछले हफ्ते हमने उनका तिरुभाव तिथि मनाई थी, भक्ति सिद्धांत जी को नृसिंह गुरु भी कहा जाता है। तो भक्ति सिद्धांत जी पहले महान आचार्य थे जिन्होंने स्पष्ट समाज में प्रचार किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित, वो जन्म पर आधारित नहीं। तो ब्राह्मणों में अनेक गुण होने चाहिए, सहनशील, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, सत्यता, सच्चाई, सफाई, ये सब गुण होने चाहिए। ये नहीं कि हम ब्राह्मण हैं और सारा झूठ ही बोलते रहे। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय का भी होना समाज में बड़ा आवश्यक है। क्षत्रिय की जिम्मेदारी बनती है समाज की सुरक्षा करें, खास करके वो शासन करें बूढ़े व्यक्तियों की, औरतों की, बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। ये नहीं जैसे आज के समाज में ना कोई ब्राह्मण है ना कोई क्षत्रिय है, कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर रहा है, कि नहीं? जिसके हाथ में बल है बस उसी का शासन चल रहा है। पर क्षत्रियों का कर्तव्य बनता है कि समाज की प्रजा का की सुरक्षा करे। फिर वैश्य, वैश्यों का कर्तव्य बनता है व्यापार, खेती की देखभाल, गाय की देखभाल। हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार गाय हमारे साथ सात माताओं में एक माता है, और गाय माता की सुरक्षा समाज का कर्तव्य बनता है। जिस समाज में गाय माता की सुरक्षा नहीं हो वो समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। आज आप देखते हो भारत में एक तरह से तो हम नियम बनाते हैं गायों की रक्षा के लिए, दूसरी तरफ से गायों पर अनेक प्रकार का अत्याचार करते हैं, कत्ल खाने चलने देते हैं और गायों को एक्सपोर्ट भी करते हैं धन कमाने के लिए। ये है हमारा दुर्भाग्य। तो जो वैश्य हैं उनकी जिम्मेदारी है व्यापार करें, खेती की देखभाल करें। आज तो खेती की देखभाल कोई करना नहीं चाहता है ना, और गायों की देखभाल। और फिर शूद्र, शूद्र की जिम्मेदारी बनती है तीन वर्णों का सहयोग दे। और ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, और क्षत्रियों की तुलना की जाती है बाहु के साथ, वैश्य की तुलना की जाती है पेट के साथ, और शूद्रों की तुलना की जाती है किसके साथ? पैरों के साथ। ये तो संक्षेप में हुए चार वर्ण। फिर इन चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और अलग अलग आश्रम में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। उदाहरण के लिए जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम में व्यक्ति को बड़ी गंभीरता के साथ नियमों का पालन करना चाहिए, आध्यात्मिक नियमों का। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति गुरु की शरण में रहता है। ब्रह्मचारी को खास करके स्त्रियों की संगत से बचना चाहिए, ये नहीं कि यहां ब्रह्मचारी में रहें और स्त्रियों का चिंतन करें और स्त्रियों की संगत में रहें और उनके विषय में सोचना नहीं चाहिए, इंद्रिय तृप्ति भोग विलास के विषय में सोचना नहीं चाहिए, चर्चा नहीं करना चाहिए और ध्यान से अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो ब्रह्मचारी रहना भी बड़े आसानी से संभव है। फिर है गृहस्थ। गृहस्थ पति के साथ रहता है। हमारे वैदिक साहित्य में दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, एक है गृहस्थ, एक है गृहमेदी। गृहमेदी उसे कहते हैं जो पति के साथ रहता है पर जिसका उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति बस। और भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो देवियम पुत्र का ये न सत्वम, हे प्रिय पुत्र मनुष्य जीवन का उपयोग करो तपस्या के पालन के लिए, और ये तपस्या होनी चाहिए तपो देवियम पुत्र का, भगवान की खुशी के लिए या दूसरे शब्द में आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो गृहस्थ आश्रम में भी हमें धार्मिक नियमों के अनुसार जीना चाहिए। और जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं भागवत प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर, तो जब उसे कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। और जब हम सांसंग शिक्षा के अनुसार नहीं जी रहे तो उसे कहा जाता है गृहमेरी। तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पत्नी के साथ रहता है पर दोनों का भाव क्या है, भगवत प्राप्ति। बच्चे होते हैं, औलाद होती है, तो भाव ये है कि हम बच्चों को भी आध्यात्मिक ज्ञान दें, बच्चों को भी ज्ञान दें जिसके द्वारा वो भगवान के धाम लौट सकें। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारा अचर प्रज्ञ, 5 साल की आयु से ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। तो ये है गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम में अगर व्यक्ति धन भी कमाता है तो सोचता है ये मैं धन कमा रहा हूं तो इसके द्वारा मुझे भगवान के प्रचार के आंदोलन में भी सहयोग देना चाहिए, भगवान के मंदिरों की भी देखभाल करनी चाहिए, वो है गृहस्थ। और बच्चे होते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ स्थिति में व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से जुदा होने लगता है और पति पत्नी तीर्थ के स्थानों की यात्रा करते हैं, भगवान के शरणागत का भाव बढ़ाते जाते हैं। और फिर है संन्यास। जिस स्थिति में व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहता स्त्रियों के साथ, पत्नी के साथ, घरेलू स्थिति के साथ, घरेलू आश्रम से, और जिसका सदा यही भाव रहता है कि वो भगवान की प्रचार करते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। और संन्यास आश्रम के 4 स्टेज होते हैं, कुरीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। ये 4 स्टेजेस है। तो परमहंस स्टेज में वो केवल यात्रा करता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो यहां वर्णाश्रम की चर्चा की जा रही है। तो प्रियव्रत पहले ब्रह्मचारी आश्रम में थे पर जब उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहते थे इसलिए वो पूरे पृथ्वी का शासन नहीं करना चाहते थे। पर जब उन्हें भगवान ने आदेश दिया नहीं इस कार्य करने की आवश्यकता है, किसी न तो कार्य को करना है, निभाना है, फिर तो महाराज प्रियव्रत जब उसने भगवान का आदेश दिया गया कि तुम पृथ्वी का शासन करो तो उस शासन करने को तैयार हो गए। इच्छा नहीं थी पर जो उन्होंने देखा ये भगवान की इच्छा है कि आप ये मैं इस कार्य को निभाऊं, तो वो तैयार हो गए और वो तैयार हो गए और फिर वो गृहस्थ आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। तो यहां देखा जा रहा है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर पूरा समाज वर्णाश्रम के अनुसार चले तो समाज में लोग सुखी होंगे। आज क्या देखते हैं आप समाज में, तनाव चिंता इत्यादि बढ़ते जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे। तो जहां तक वर्णाश्रम का प्रश्न है, जो वैष्णव हैं उनका भाव है दैवा वर्णाश्रम। दैवा वर्णाश्रम का अर्थ है कि चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप वानप्रस्थ हो, चाहे आप सन्यासी हो, आपका मूल भाव क्या है? भगवत प्राप्ति। अगर केवल वर्णाश्रम का पालन करना है तो इसमें इंद्रिय तृप्ति इत्यादि की सुविधा है, और दैवा वर्णाश्रम में चारों आश्रमों में आपका मूल उद्देश्य रहता है क्या? भगवत प्राप्ति। और मूल भाव क्या रहता है? प्रचार, भगवान की सेवा में जुड़ना किसी न किसी रूप से। जैसे आप चैतन्य महाप्रभु जी के अनेक साथी गृहस्थ आश्रम में थे और वो सब जुड़े हुए थे संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में और प्रचार में। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार दैव और नाश्रम होना चाहिए समाज में, और जिस समाज में वर्णाश्रम नहीं हो, दैव वर्णाश्रम नहीं हो, वो समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जैसे समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कभी देखा किसी व्यक्ति का शरीर सिर के बिना? तो ब्राह्मणों का होना बहुत आवश्यक है, क्षत्रियों का होना बहुत आवश्यक है। पर आज के वातावरण में क्या है, लगभग पूरी प्रजा क्या है? शूद्र। कलो शूद्र समभाव। हमारे देश में आजकल हम लड़ते रहते हैं ऊंची जाति का कौन है, नीची जाति का कौन है। पर शासन की दृष्टि से सभी नीची जाति के हैं, कलो शूद्र समभाव, सभी शूद्र बुद्धि के हैं। और क्योंकि समाज में ब्राह्मण नहीं है, लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। प्राचीन समय में जो शासन करते थे उनको सलाह देने के लिए ब्राह्मणों की सभा होती थी, आज असुरों की सभा है। और जो शासन करते थे वो राजऋषि थे। जैसे भगवान राम के समय भगवान राम इतने चिंतित थे प्रजा के सुख के विषय में कि वो बीच बदलकर समाज में चलते थे, ये देखने के लिए किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ कठिनाई तो नहीं है। तो जो राजा होते थे वो प्रजा को अपनी औलाद के समान पालते थे, और प्रजा का कोई भी व्यक्ति किसी समय भी राजा का दर्शन प्राप्त करने के लिए महल में पहुंच सकता था। आज है वो सुविधा के पास नहीं। तो इसलिए समाज में जो है अत्यंत दुखी है, प्रजा दुखी है, लोगों की चिंता तनाव इत्यादि बढ़ते जा रहा है। और मूल कारण क्या है? भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो जो वैष्णव भक्त हैं वो क्या करते हैं? वैष्णव भक्त जो हैं वो जानते हैं कि समाज में लोग दुखी हैं, वो जानते हैं कि भगवान की शिक्षा के बिना समाज अधूरा माना जाता है, तो क्या करते हैं? प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी जो प्रकट हुए थे उन्होंने इस प्रचार के कार्य पर बल दिया, इसीलिए परम भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता का उपदेश दिया उन्होंने भी क्या कहा 18वें अध्याय में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार कर रहा है उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। और क्षेत्रीय महाप्रभु जी ने इसी भाव को पकड़ किया, अपने साथियों को कहा घर घर जाकर प्रचार करो। क्षेत्रीय महाप्रभु ने अपने संकीर्तन का आंदोलन नवद्वीप में शुरू किया। और एक समय क्षेत्रीय महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर को मिलने गए थे। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहा जाता है और हरिदास ठाकुर 3 लाख बार जाप समाप्त किए बिना ना भोजन खाते थे, ना कुछ पीते थे, ना एक पानी का बूंद भी पीते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने अपने भक्तों को कहा घर घर जाओ प्रचार करो और हर घर में जाकर एक संदेश दीजिएगा। क्या था वह संदेश? बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। घर घर जाकर लोगों को हाथ जोड़कर कहो कृष्णा का नाम लो, बोलो कृष्णा, भाजो कृष्णा, कृष्णा की उपासना करो और करो कृष्णा शिक्षा, कृष्णा का उपदेश स्वीकार करो। कृष्ण भगवान का उपदेश कहां प्राप्त होगा? भागवत गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों में। तो बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर क्षेत्र ने महाप्रभु जी के संदेश के अनुसार घर घर जाना उन्होंने आरंभ कर दिया। घर घर जा रहे थे भगवान का संदेश लेकर। कई घरों में वो जब गए बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। लोगों ने कहा संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बैठिए बैठिए, क्या है आपका आदेश? तो उन्होंने कहा आदेश बोलो कृष्ण, बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और बड़ी खुशी से वो नाचने लगे। वो हरि नाम को उन्होंने स्वीकार कर लिया। कई घर में वो गए, किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। लोगों ने देख लिया कि दो सन्यासी आए हैं, कहने लगे ये तो पागल हो गए हैं, वो पागल की संगत में हैं। किसकी? निमाई की। निमाई ने जब अपना किस्म के दिन आंदोलन आरंभ किया, कईयों ने साथ दिया, कईयों ने साथ नहीं दिया। आप आश्चर्य हो गए, कई हिंदू ब्राह्मण गए काजी के पास शिकायत करने, क्या ये निमाई ने हरि नाम सबके दर शुरू किया, हमारे धर्म की बेइज्जती हो रही है। तो फिर चांद काजी को अपने प्रतिनिधि भेजने पड़े। तो कई घरों में वो गए तो किसी ने उनका स्वागत, लोगों ने कहा ये तो पागल की संगत में पागल बन गए हैं और कुछ बात नहीं की। और कई घरों में वो गए, लोगों ने दरवाजा खोला पर कहा तुम अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था नवद्वीप में, और जब वो श्रीवत अंगन में हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे तो उस सभा में केवल जो उनके प्रिय निकट के भक्त थे उन्हें अधिकार था अंदर आकर दिव्य दर्शन प्राप्त करने का, सबको नहीं। तो वो लोग कहने लगे जब हम तुम्हारे अंग आश्रम में आए तुमने अंदर आने नहीं दिया, अब तुम हमारे यहां नहीं आ सकते। और जब और कई कहने लगे हां लगता है जासूस आए हैं हमारे घर में, देखने के लिए क्या है घर में, और फिर चोर आएंगे लूटने के लिए. तो इस प्रकार का व्यवहार किया गया था किसके सामने? भगवान नित्यानंदा और हरिदास ठाकुर के सामने. तो जब आप प्रचार के कार्य में जुड़ते हो, कई स्थानों में आपका अच्छा स्वागत होगा, आदर होगा, पर कई स्थानों में आपकी बेइज्जती भी होगी. पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वैष्णव जो हैं उनके मन में एक ही भाव है कि जो परम भगवान का आदेश है, जाने दाखो ताए कहो, उसे हमने पूरा करना है. और उसे पूरे करने के लिए अगर प्रयास भी करना पड़े तो वैष्णव अपने आप को बड़े भाग्यवान मानते हैं. प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मुझे चिंता उन व्यक्तियों की है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं. तो ये है भक्तों का भाव. जैसे इस समय दिसंबर के महीने में गीता की जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त सारे भारत में एक संकीर्तन भगवद गीता ग्रंथ के वितरण के सेवा में जुड़ते हैं, और आप में से कई भक्त छुट्टी लेते हो, नौकरी के बाद जाते हो और प्रयास कर रहे हो गीता बांटने के लिए. क्यों? क्योंकि इस भगवद गीता में ज्ञान है. ज्ञान के द्वारा अज्ञानता दूर होती है, और इस ज्ञान की आज आवश्यकता है. जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, समाज में अगर किसी चीज की कमी है तो किस चीज की कमी है? इस दिव्य ज्ञान की कमी है. समाज में बौद्धिक ज्ञान की कमी नहीं, कोने कोने में भारत में भी पाठशाला है, महाविद्यालय है, पर आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है. और शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, वैसे एक रूप से देखा जाए अनेक धर्म के प्रचारक हैं. अब किसी शहर में जाओ, आपको 50 बिलबोर्ड दिखेंगे कथा भगवत कथा के और अनेक प्रचारक. पर हमने ये देखना है कि वो जो प्रचार कर रहे हैं शास्त्र पर आधारित है या हमारी कल्पना है. धर्मम से साक्षात भगवत परिणाम. धर्म का अर्थ क्या है? भगवान की वाणी. तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो इस वाणी की कमी है और इस ज्ञान की कमी है. और ये ज्ञान कैसे दूर होगा? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा. जब हम ग्रंथों का वितरण करते हैं, इन ग्रंथों में है क्या? श्री भगवान उवाचार, परम भगवान बोल रहे हैं. इन ग्रंथों में है क्या? भगवान की वाणी, जिसमें किसी प्रकार का पूर्णता नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं. और लोग जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अपने जीवन को सुधारते हैं. जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो समझते हैं क्या हमें क्या करना चाहिए. तो भगवान ने कहा है गीता के 18वें अध्याय में, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मैं प्रचार कर रहा है. तो आप जो भक्तजन, आप में से इस सभा में कौन से कौन भक्त हो जो मैराथन की सेवा कर रहे हो? ये सब अच्छा, कई हो जो नहीं कर रहे, कई हो कर रहे हो. तो आप सब जो ये ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़े हो, आप लोग जो सेवा कर रहे हो बड़ी महत्वपूर्ण है. और प्रभुपाद जी ने कहा, जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा. क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों की अज्ञानता दूर होती है. इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों को असली ज्ञान मिलता है. और असली ज्ञान क्या है? सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तम सर्वे पापे व मोक्ष स्वामी मा सुतः. तो सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ. तो चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, हम सबका मूल भाव होना चाहिए क्या? कि हम तन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़ें. और अगर हम अपने अपने आश्रमों के नियम के अनुसार रहेंगे और अपने अपने आश्रम के जो नियम हैं बड़े स्पष्ट रूप से आप इस ज्ञान को शास्त्र में प्राप्त करते हो। तो अगर आप अपने अपने आश्रमों के नियम के अनुसार रहोगे तो उस आश्रम में रहते हुए आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और जो वैष्णव है परा दुख दुखी, जब वो देखता है कि समाज की प्रजा भौतिक कार्य में जुड़ी है और प्रयास कर रही है दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, तो दुखी होकर वो प्रयास करते हैं क्या भगवान का ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जुड़िए इस मैराथन में इस महीने दिसंबर के महीने में गीता जयंती के उपलक्ष्य हम इस कार्य में जुड़ते हैं। भगवत धर्म के छठे अध्याय में आपको दक्षा की कथा प्राप्त होती है। दक्षा थे प्रचेतस के पुत्र और प्रचेतस थे महाराज प्रचिन्न बड़ेश्वर के पुत्र। तो दक्षा को जिम्मेदारी दी हुई थी भगवान ने सृष्टि का प्रजा बढ़ाओ, तो दक्षा ने प्रजा बढ़ाना शुरू किया। पर उन्हें लगा कि उनके कार्य में कुछ कमी रह रही है इतने, तो उन्होंने बहुत गहरी तपस्या की इस कृपा की प्राप्त करने के लिए जिसके द्वारा वो सृष्टि प्रजा का निर्माण ठीक रूप से कर सकें। तो भगवान उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिया दक्षा को जहां वो तपस्या कर रहे थे पहाड़ों में। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूं। वो दक्षा को इतना गहरा आनंद अनुभव हुआ जब उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया कि उनके सारे अंग प्रसन्न हो गए। फिर भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं कि तुम्हारी यह तपस्या है समाज के कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए। तो आप जब प्रचार के कार्य में जुड़ते हो ये कार्य है समाज के कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। और जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए इस प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं उन्हें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। और प्रभुपाद जी ने भी कहा जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा यह रिक्वेस्ट था कि आप सब जुड़िए इस मैराथन में। एक समय प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे, उस समय उनका तात्पर्य स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं था, तो भक्त कह रहे थे प्रभुपाद जी प्लीज टेक रेस्ट, विश्राम कीजिए। प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखा और कहा प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्ण। जो भगवान की सेवा में जो संघर्ष करना है ये सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मौका मिलता है, तो मुझे इसे दूर मत करो। तो जब हम प्रचार के कार्य में जाते हो थोड़ा सा संघर्ष है, आपकी तो इच्छा है हर व्यक्ति आपके टेबल में आकर गीता ले रहे, आपकी तो इच्छा है जिस घर में हम जाएं जिस व्यक्ति से कहें प्लीज टेक गीता वो कहे हाँ लो जैसे शाम के समय आप देखते हो शराब की दुकानों के सामने बड़ी भीड़ होती है जैसे मुफ्त में शराब बिक रही है। आपने देखा है कभी शाम के समय शराब की दुकानों के सामने काफी भीड़ होती है? तो भक्तों की तो इच्छा ये है कि हम जब जाएं गीता बांटने तो हर व्यक्ति लाइन में खड़े हो जाए हमें दो। पर वैसे संभव नहीं होगा। और आप भगवान नित्यानंद हरिदास का अनुभव का स्मरण कर सकते हो, वो भी जब घर घर जा रहे थे कईयों ने उनका आदर दिया कईयों ने दरवाजा भी नहीं खोला। तो आप जब प्रचार करते हो ये आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति कहेगा मुझे किताब दो, पर भगवान आपके हृदय में उपस्थित हैं और दूसरे के हृदय में, तो भगवान देखते हैं कि आप श्रद्धा से कम प्रयास कर रहे हो गुरु प्रभुपाद की इच्छा को पूरा करने के लिए, तो फिर भगवान आपको सुविधा देंगे, दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देंगे हाँ ये बड़ा श्रद्धालु भक्त है हाँ ले लो गीता इनसे, तो पवित्रता असली बल है। तो हम सब इस कार्य में जुड़ सकते हैं, चाहे अब गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो। हमने देखा है अलग अलग स्थानों में, जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में उनकी जो योजना है, आधे से ज्यादा गीता जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं वो घर घर जाकर बांट रहे हैं। तो आप सब जुड़िए इस कार्य में, हमारा सिद्धांत दैवा वर्णाश्रम, इसमें चाहे आप ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, हम सब नियमों के अनुसार रहते हैं, प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं और सबके मन में एक ही भाव है भगवान की प्रशंसा। और जिस कार्य के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं वो कार्य का हम पालन करते हैं, जिसमें प्रसन्न नहीं होते उसमें वो कार्य नहीं करते। सब जुड़िए इस मैराथन में उत्साह के साथ और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। संक्षेप में आज के श्लोक में महाराज प्रियव्रत की कथा चल रही है। आज के श्लोक में हम देखते हैं कि प्रियव्रत ने 11 अरब सालों के लिए पृथ्वी पर शासन किया और उनके तीन पुत्रों ने पारमहंसा संन्यास स्वीकार किया था। पर महाराज प्रियव्रत के शासन के समय कोई शास्त्र के विपरीत कार्य नहीं था। भगवान राम का जब शासन चल रहा था मृत्यु भी व्यक्ति खुद चुन सकता था, किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, किसी प्रकार का दुख नहीं था, कष्ट नहीं था। क्यों? पूरा समाज सुखी था। क्यों? क्योंकि राजा स्वयं भगवान थे और पूरी प्रजा जुड़ी हुई थी भगवान की सेवा में। तो जिस समाज में भगवान केंद्र बिंदु होंगे, जिस समाज में दैव वर्णाश्रम का पालन होगा वो समाज सुखी रहेगा, वो समाज शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार रहेगा और इस समाज में कोई क्लेश नहीं होगा। और हम प्रचार करके दैव वर्णाश्रम को स्थापित कर सकते हैं। हमें उत्साह से प्रचार करना चाहिए इसे संभव बनाने के लिए। हरे कृष्णा। तो सब जुड़ोगे मैराथन में? हाँ पक्का? अभी भी आधा महीना बचा हुआ है लगभग। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है तो ले सकता हूँ, मुझे फिर जाना है। हाँ
हरे कृष्णा।
हाँ मुझे मुझे भी दिल्ली जाना है।
हरे कृष्णा महाराज, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए आप बोले तो हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में है, फिर हम लोग जैसे वानप्रस्थ और संन्यास धारण करना है कि गृहस्थ में भगवत प्राप्ति?
जो गृहस्थ आश्रम में है इनका प्रश्न है हमें क्या वानप्रस्थ संन्यास ग्रहण करना। संन्यास इतना आवश्यक नहीं है, आप गृहस्थ आश्रम या वन में भी रह सकते हो शासन की शिक्षा के अनुसार। और अगर आप शासन की शिक्षा के अनुसार रहोगे तो जब संभव हो तो वानप्रस्थ ले सकते हो, पर ये कोई निश्चित आवश्यकता नहीं है। ओके तो सब जुड़ोगे मैराथन में? तो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ लें, अभी भी मौका है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। ओके हरे कृष्णा।